हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विहा ने जब देखा कि वेदांत उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और बस उसे ही देखे जा रहा था, तो उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसके सीने पर मारते हुए कहा, पतिदेव, मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? बोलो ना, अब तो मैं समझदारों वाली ही बात कर रही हूँ, बच्चों वाली बातें नहीं कर रही हूँ जिसका आपके पास कोई जवाब ही ना हो। इतना बोलकर उसने मुंह बना लिया और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। वेदांत ने अपना एक हाथ उसके चेहरे पर ले जाते हुए उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर स्माइल करते हुए बोला, आई नो टोमेटो, तुम्हें इग्नोरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुम्हें इग्नोर कर भी नहीं रहा हूँ। मैं तो बस ध्यान से सुन रहा हूँ। तुम कभी कभी तो समझदारी वाली बातें करती हो। मैंने सोचा कि ध्यान से नहीं सुनूंगा तो मुझे समझ नहीं आएंगी। वेदांत की ये बात सुनकर विहा ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है आप मानते हो कि मैं समझदार हूँ और मैं भी कभी कभी अच्छी बातें करती हूँ। वेदांत ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत की और उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, हाँ, तुम तो हमेशा ही अच्छी बातें करती हो, चाहे वो बचकानी हो या समझदार। इतना बोलकर वो आगे बढ़ा और धीरे से विहा के होठों पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही विहा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप मुझे ऐसे बार बार क्यों किस करते हो? वेदांत ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये कैसा सवाल है टोमेटो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ। वेदांत के करीब से विहा की सांस भारी हो गई थी। उसने मुश्किल से अपनी घबराहट से कांपते होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब तो किस नहीं हो सकता है। वेदांत ने सीलिंग की तरफ देखकर कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, मेरे ख्याल से इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं हो सकता है। विहा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, शब्दों से जवाब दिया जाता है ना, एक्शन से नहीं। वेदांत ने उसके चेहरे पर आए कुछ बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, शब्दों से जवाब देने के लिए मेरे पास पूरी दुनिया है, लेकिन मैं तुम्हें शब्दों से जवाब नहीं देना चाहता हूँ। विहा ने हैरानी से वेदांत की तरफ देखा। वेदांत भी उसी की आंखों में देख रहा था। अब वेदांत उसे कैसे बताए कि जब भी वो कुछ बोलती है उसे इतनी प्यारी लगती है कि वो चाहकर भी अपने होठों की हरकतें नहीं रोक पाता है। बाकी सबके लिए उसकी बातें इरिटेटिंग हो सकती हैं, लेकिन वेदांत के लिए वो जब जब बोलती है उसे क्यूट चीज उसके लिए कोई नहीं हो सकती। विहा उसकी बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही उन्हें एक साथ कई कदमों की आहट सुनाई दी, जिसका मतलब था कि ब्रेक खत्म हो चुका है और सारे बच्चे वापस क्लासरूम में आ रहे हैं। विहा जल्दी से वेदांत की गोद से उठकर वापस अपनी बेंच पर बैठ गई और फिर तिरछी नजरों से वेदांत को देखने लगी। वेदांत की बातें अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसे लगा नहीं था कि उसका पति उसके साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि बात बात पर उसे ऐसे किस करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अनाही की गाड़ी डॉक्टर रश्मि के क्लिनिक के सामने जाकर रुकी। अनाही ने ड्राइवर को वापस घर जाने के लिए कहा और खुद तेज कदमों से क्लिनिक के अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके साथ ही डॉक्टर रश्मि ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें देखकर अनाही ने उन्हें पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, आप भैया जिससे मेरी कॉल पर बात हुई थी? रश्मि ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मुझसे बात हुई थी? ये सुनकर अनाही मन ही मन हल्का सा मुस्कुराई और फिर रश्मि के पाँव छू लिए। रश्मि ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे अंदर ले गई। अनाही ने देखा रूहान उसे चेयर पर लिटाया हुआ था और उसकी आँखें बंद थीं। उसे ऐसे देखकर उसने परेशान होते हुए कहा, ये कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे और कब से सो रहे हैं? रश्मि ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे कमरे में लेफ्ट साइड मौजूद सोफे पर बैठाते हुए उसके पास बैठकर कहा, ये रात को जब मेरे पास आया था तब से सो रहा है और कब तक सोएगा ये मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक दो घंटा तो और लेगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। अनाही ने जल्दी से कहा, आप बताइए कहाँ है सामान, मैं खुद बना लूँगी, आप क्यों तकलीफ़ उठा रही हैं? रश्मि हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, नहीं बेटा, इसमें तकलीफ उठाने वाली क्या बात है, पहली बार मेरी बहू मेरे क्लिनिक पर आई है, मैं उसकी खातिरदारी जरूर करूंगी। इतना बोलकर उसने रूहान की तरफ देखा। वो रूहान को बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह मानती थी और अब अनाही को देखकर उसके दिल में एक सासुमा वाली फीलिंग जरूर आ रही थी। अनाही भी इस बार रश्मि को रोक नहीं पाई और रश्मि उठकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने कमरे से बाहर चली गई। अनाही ने एक गहरी सांस ली और फिर सोफे से उठकर रूहान के पास गई। उसने धीरे से चेयर की आर्मरेस्ट पर मौजूद रूहान के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब कब तक ऐसे लेटे रहेंगे, मुझे जल्दी से आपसे बात करनी है, आपसे माफ़ी भी मांगनी है, मैंने आपकी तबीयत का नहीं पूछा। इतना बोलकर उसने आहिस्ता से रूहान के हाथ को चूम लिया और फिर वहीं फर्श पर उसके पास बैठ गई। वो उसके हाथ को सहलाते हुए लगातार रूहान की पलकों की तरफ देख रही थी, शायद उनमें कोई हरकत हो जाए। लेकिन अफसोस, रूहान बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह वैसे ही लेटा रहा। शायद डॉक्टर रश्मि ने काफी हाई डोज वाली इंजेक्शन उसे दे दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी गहरी नींद से उठ ही नहीं पा रहा था। वहीं रश्मि कॉफी बनाते वक्त अनाही के बारे में सोचकर खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी में महसूस कर रही थी। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था, ये सोचकर कि उसने इतनी प्यारी बच्ची की जिंदगी इतनी मुसीबत में डाल दी है। उसने अपने होठों को काटकर अपने मन में कहा, बस कि मेरे रूहान को थोड़ा सा समझ ले और उसका साथ ना छोड़े। मैं नहीं चाहती परिवार वालों की चाल सफल हो जाए। मैं उन्हें रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन अनाही से उम्मीद कर सकती हूँ कि वो रूहान का साथ देगी, ना कि बाकी लोगों की तरह उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर रश्मि भी उम्मीद करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। मुंबई का बाहरी इलाका, जहां शायद ही कोई वहां गुजरता हो, एक काले रंग की हवेली मौजूद थी। वो हवेली 3 मंजिला थी, देखने में बिल्कुल रॉयल वाइब आ रही थी। उसके बाहर 3-4 बॉडीगार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। हवेली के ग्राउंड में बीचों बीच एक फाउंटेन बना हुआ था, जहां एक घोड़े के मुंह से पानी निकल रहा था। दोनों तरफ गार्डन था और बीच में एक सीधा रास्ता था। अंदर हॉल में सोफे पर पार्थ किसी राजा की तरह बैठा था। उसने काले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके हाथों में हमेशा की तरह उसका पसंदीदा नशा उसकी सिगरेट थी। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश भरते हुए सामने सोफे पर लेटी रूही को देख रहा था, जो अभी तक उठी नहीं थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद उसने गुस्से में अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहा, ए लड़की, उठो, मैं इतना इंतजार किसी का नहीं किया है जितना तुम मुझे करवा रही हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां खड़े बॉडीगार्ड भी अपनी जगह से हिल चुके थे, लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बिल्कुल ऐसे सो रही थी जैसे वो कोई लाश हो, जिंदा इंसान नहीं। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे सोते हैं, चाहे उनके कान के पास बम ब्लास्ट ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बस सुई के गिरने की आवाज से भी उठ जाते हैं, और मिस रूही फर्स्ट कैटेगरी में आती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कौन कितना चिल्ला रहा है, जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होती उसकी आंखें नहीं खुलती।
पार्थ ने गुस्से में अपना एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरा और फिर एक झटके से सोफे से खड़ा हो गया। सोफे पर मौजूद पानी की बोतल उठाते हुए उसने गुस्से में इसका ढक्कन खोला और फिर एक झटके से पूरा पानी रूही के चेहरे पर गिरा दिया। वो पानी इतना ठंडा था कि गिरते ही रूही लगभग चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसके बाल और चेहरे से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें सुर्ख होकर सीधे पार्थ पर जा टिकी।